मोक्षमार्गस्यनीतारं भीत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सप्तम अध्याय का स्वाध्याय गतिमान है। और सप्तम अध्याय विशेष रूप से व्रतियों के लिए महत्व रखता है, और जो व्रती बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो कभी न कभी व्रती बनना चाहते हैं उनके लिए भी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनसे विरति का नाम व्रत है। विरति का अर्थ होता है विराम लेना, फुल स्टॉप। और इसमें दो घटनाएं होती है, एक तो पापों से विरक्त होकर संकल्प लेते हैं कि हम इन पापों का त्याग करते हैं। फिर संकल्प लेने पर अंदर जो एक विशुद्धि आती है, उससे गुणस्थान परिवर्तित हो जाता है, अथवा एक ही गुणस्थान के लब्धि स्थान बदल जाते हैं, विशुद्धि बढ़ जाती है। तो ये कार्य घटना रूप में होता है, और फिर विराम अपने आप उसमें चलता रहता है। जब तक वो व्रत रूप परिणाम रहेंगे, तब तक पापों से विराम रहेगा। उसको आचार्य महाराज ने व्रत कहा है। यानी दो घटना हुई, एक बाहर से आपने जाकर के गुरु के चरणों में या फिर परमेष्टि की साक्षी में त्याग किया, और फिर अंतरंग में आपको वो लब्धि हुई, एक विशेष प्रकार की विशुद्धि। त्याग करने के पहले भी आपके अंदर पुरुषार्थ तो हुआ था, लेकिन त्याग करने के बाद जो आपके अंदर विशुद्धि आई, जिस विशुद्धि ने आपके गुणस्थान को अथवा संयमा संयम संयम लब्धि स्थान को बदल दिया, तो वो जो विशुद्धि थी उससे विराम लग गया। देखो, रत्नकरण में जो दो काव्य थे उसमें ये था, पहले में ये था कि राग द्वेष से छूटने के लिए त्याग करते हैं, फिर कहते हैं कि राग द्वेष छूटने के बाद त्याग रहता ही है। दो बातें कही, पहले त्याग किया था फिर वो त्याग हो गया। तो एक करोति क्रिया है और दूसरी भौतिक क्रिया है। तो आचार्य कह रहे हैं कि व्रत जो है वो भौतिक क्रिया है, पर क्योंकि करोतिक क्रिया उसमें सहायक है, इसलिए कार्य का कारण में उपचार करके त्याग को भी व्रत कहा जाता है। गुरु के चरणों में जो त्याग किया है पापों का, वो भी व्रत है, पर वास्तविक जो व्रत है, अंतरंग व्रत, वो भावों की शुद्धि से अंतरंग में एक ऐसा परिणाम बन गया कि उसके बाद वो चीज छूट गई है, उसका नाम व्रत है। इसलिए व्रती वो मनुष्य है या वो प्राणी है जो अवसर पाकर भी प्रलोभित नहीं होता, उसका नाम व्रत है। लोक के भय से पाप को न करना और पाप के भय से पाप को न करना, दोनों में बड़ा अंतर है। लोक के भय से बहुत लोग पापों से बचते रहते हैं, वरना लोक में बहुत उपद्रव हो जाने लग जाएंगे। डर रहता है, कानून का भी डर रहता है, कई प्रकार के भय होते हैं, न तो फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें अगर छूट मिल जाए तो फिर उद्दंडता आ जाएगी, उच्छृंखलता आ जाएगी, सब स्वच्छंद हो जाएंगे। पर वो डर के कारण एक भय रहता है कि इसका दंड मिलेगा, दंड का भय रहता है, दंड के भय से वो पाप नहीं करते। और फिर दंड के अलावा बदनामी होगी तो उस बदनामी के डर से पाप नहीं करते, निंदा के भय से पाप नहीं करते, उसका नाम व्रत नहीं है। व्रत पाप के भय से पाप का न करना है, ऐसी एक निर्मलता रहती है। फिर ये त्याग जो होता है पापों का, वो देश त्याग होता है और सर्वत त्याग होता है। देश का अर्थ होता है जैसे एक राष्ट्र में अथवा एक भारत क्षेत्र में अनेक देश हैं, एक आर्य खंड में अनेक देश हैं, अंग देश, कौशल देश, फिर अवंती देश, मालव देश, ऐसे विभिन्न देश हैं, एक वत्स देश जहाँ कौशाम्बी नगरी है, कुरु जंगल देश जहाँ हस्तिनापुर नगरी है, कलिंग है, फिर मगध देश जहां पर राजगृह नगरी है, विदेह देश है जहां कुंडपुर है, ऐसे कितने सारे देश हैं। तो वो देश जो है छोटे छोटे भाग हैं, एक आर्य खंड के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उनको देश कहते हैं। फिर उनकी राजधानियां भी होती है, सब बातें होती है, राजा होते हैं और सब शासन होता है। तो एक अंश कहलाया देश। उसी प्रकार अंश रूप से पाप का त्याग करना, और वो अंश जो है अपने मन से नहीं बनेगा, वो जो शास्त्रों में निर्धारित है उस रूप से बनेगा। तो अंश रूप से पाप का त्याग करना अणुव्रत है, और सर्व रूप से, सर्वतः पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, और महाव्रत को स्थिर रखने के लिए पांच पांच भावनाएं हैं। अब ये जो भावना शब्द है इस पर अपन ध्यान देंगे, क्योंकि भावना शब्द का अर्थ हिंदी में एक अंदर की अभिलाषा होती है, मेरी भावना है कि तुम डॉक्टर बन जाओ। तो ये भावना जो है कामना है, पर शास्त्र में जो भावना शब्द आया है वहां पर देखेंगे अपन, तीन बातें कही है आचार्यों ने भावना करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आचार्य कहते हैं वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है। तो इसका अर्थ हो गया कि आपके पास शक्ति होना जरूरी है। अब वो जो कामना रूप भावना है उसके लिए शक्ति हो रहे किसी आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं भावना करता हूं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, अब इसमें कौन सी शक्ति लग रही है उसकी। पर यहां पर शक्ति की आवश्यकता है, और क्या चाहिए? तो आचार्य कहते हैं चारित्र मुंह अर्थात कषायों का क्षय उपशम भी आवश्यक है, यानी कषायों के सद्भाव में भावना बन नहीं सकती। दूसरी बात, पहले कहा कि शक्ति के अभाव में नहीं बन सकती, फिर कषायों के सद्भाव में नहीं बन सकती, और तीसरी बात कह रहे हैं अंगोपांग नाम लाभो लाभापेक्ष पेक्षेण आत्मना भाव्यते इति ता इति भावना। और तीसरी बात कह रहे हैं कि नाम कर्म का उदय भी आवश्यक है। नाम कर्म जो होता है वो शरीर की संरचना करता है, तो उसका उदय होता है तो शरीर व्यवस्थित रहता है, उसका उदय भी अपेक्षित है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो भावना है ये चेष्टा रूप ही हो सकती है, क्योंकि जिसमें शरीर की आवश्यकता है, जिसमें कषायों का शमन आवश्यक है, अनुदय आवश्यक है कषायों का, और जिसमें शक्ति आवश्यक है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि जब अपन प्रवृत्ति में तत्पर हो, इनके सहयोग से जो प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम भावना है। तो फिर अहिंसा की भावना बताई पहले कि अहिंसा, अब वो रक्षा करने के लिए और अहिंसा में स्थिर रहने के लिए ये पांच भावनाएं, मतलब इन पांचों का आप आचरण करेंगे तो आपकी अहिंसा स्थिर रहेगी। आपने अहिंसा व्रत धारण किया और वो व्रत जो है वो वाला व्रत, बाह्य व्रत और अंतरंग व्रत दोनों, बाह्य व्रत तो आपने संकल्प करके त्याग करा गुरु के पास, और अंतरंग व्रत उस संकल्प के बाद जो अंतरंग में एक विशुद्धि आई और उसके बाद वो राग समाप्त हो गया उस वस्तु के प्रति, उस चेष्टा के प्रति अनुराग ही नहीं रहा, रुचि नहीं रही, उसका नाम अंतरंग व्रत। तो उसकी स्थिरता के लिए ये पांच पांच प्रवृत्तियां अपेक्षित है। ये पांच प्रवृत्तियां करते रहेंगे आप एक एक व्रत के लिए तो 25 भावना हो गई, एक व्रत की 5, 5 व्रतों की 25, 25। तो अहिंसा के लिए कह रहे हैं कि वांग गुप्ति, जबान संभाल कर बोलना, क्योंकि बोली अगर संभाल करना बोली जाए तो गोली हो जाती है। वचन संभाल कर बोलते हैं तो फिर ठीक रहता है, बिना संभाले बोलते हैं तो आघात होता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वचन संभाल कर बोलना। मनोगुप्ति, विचार संभाल के रखना, क्योंकि विचार अगर दूषित हुए हैं तो फिर, अब देखो जिनके पास व्रत नहीं है वो कभी कभी कषाय में निरपराध लोगों के बारे में भी कुछ सोच बैठते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी देश के प्रति अपने भाव अच्छे नहीं हैं, तो कई लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि वो सारा देश नष्ट हो जाए। अब सारा देश नष्ट हो जाए तो उनमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपराधी हैं, और बाकी सबको खत्म करना चाहोगे क्या? जो सोचते भी नहीं कुछ, किसी का बुरा सोचते भी नहीं, ऐसे लोग भी वहां पर हैं, उन सभी का नाश करना चाहोगे क्या? ये न्याय नहीं है। और फिर आपके सोचने से क्या मतलब है? जो देश संभालने वाले हैं उनको विवेक से काम करने दो, या फिर आप उनको विवेक के कुछ बिंदु दो, वहां तक पहुंचाओ बात। तो सर्वनाश की मानसिकता, केवल मानसिकता, कुछ आप बोले भी नहीं और किसी को पता भी नहीं है, वो भी बाधक हो जाती है अहिंसा व्रत में। इन दोनों को शांत रखना। फिर ईर्ष्या समिति, जमीन पर चलते समय देखभाल करके चलना, अब दिखता नहीं कभी यहां पर, वो बड़े बड़े वो आ जाते हैं जीव, बिल्कुल शांत प्रकृति हमारे ख्याल से ऐसा लगता है हमें। कई बार हमने देखा उनको यहाँ पर आसपास, पूरा ऐसा प्रांगण है, वनस्पतियां हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर कम से कम जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, वहीं वहीं पर कम से कम 100 पेड़ होंगे, 100 वृक्ष होंगे कम से कम, इतने यहाँ पर एक प्राकृतिक वो बने हुए हैं स्थल। तो यहाँ जीव जंतु रहते हैं, तो उन जीव जंतुओं के प्रति दया का पालन करना है। यहाँ तो आपको ईर्या समिति व्रतियों के लिए कह रहे हैं कि ईर्या समिति रखने से, देखकर चलने से, 4 हाथ भूमि देखकर चलने से जीवों की रक्षा हो सकती है। आपका पैर अनजाने में उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जिससे उनको आघात हो जाए। फिर कहते हैं आदान निक्षेपण समिति, कोई भी चीज उठाते समय या रखते समय ध्यान रखना आपको। उठाते समय वहां जीव हो सकते हैं और उनको बाधा पहुंच सकती है, और रखते समय भी जीव हो सकते हैं, बाधा पहुंच सकती है। तो देखभाल करके और थोड़ा शोध करके रखने का। फिर आलोकित पान, ये तो 4 बातें अलग हो गई। फिर आलोकित, 2 गुप्ति 2 समिति और 1 आलोकित पान का अर्थ होता है कि जब तक सूर्य का प्रकाश है, यानी साइंस के अनुसार जब तक अपनी आंखों की कोन सेल्स काम करे, कलर विजन जब तक आंखों का काम करता है, जैसे ही नाइट होती है अल्ट्रावायलेट रेज खत्म हो जाते हैं और अपनी आंखें जो होती है उसके कोन सेल्स उसमें चले जाते हैं विश्राम की अवस्था में, रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम जो अपन कलर्स देखते हैं वो आर्टिफिशियल लाइट में देखते हैं, ये नेचुरल लाइट में नहीं देखते हैं। तो फिर जो ओरिजिनल कलर्स है वो कभी नहीं देख सकते रात में। आप अभी अपने वस्त्र का रंग देख लीजिए और रात में देख लेना, याद रखना अभी कैसा था और रात में फिर देख लेना कितना डिफरेंस है दोनों में। फोटो खींच लो रात को और फिर दिन में, एक फोटो आर्टिफिशियल लाइट में खींच लो और एक फोटो सनलाइट में खींच लो, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अहिंसा की रक्षा के लिए कृत्रिम प्रकाश में भोजन नहीं करना है। आलोकित पान भोजनानी, सूर्य जब तक के है तब तक के पीने की वस्तुएं और खाने की वस्तुएं ग्रहण कर लो, रात में शरीर को विश्राम करने दो दिन ढलने के बाद। दिन रात खाने से क्या किसी की आयु लंबी हो जाती है या कोई अमर बन जाता है? सबको मरना है, तो फिर ये लोभ क्यों? तो ये 5 भावनाएं अहिंसा की दृढ़ता के लिए है, स्थिरता के लिए है। तदुपरांत सत्यव्रत की स्थिरता के लिए कह रहे हैं राग और द्वेष, राग के कारण झूठ बोला जाता है, द्वेष के कारण झूठ बोला जाता है और अज्ञान के कारण झूठ बोला जाता है, बस इतने ही कारण है। राग द्वेष और अज्ञान के अलावा और कोई कारण ही नहीं झूठ बोलने का। तो राग द्वेष संबंधी जो झूठ है उसको दूर करने के लिए क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य, ये 4 जो हैं कषाय हैं, इनमें 2 और 2 नो कषाय हैं। क्रोध कषाय है, लोभ कषाय है, क्रोध द्वेष है, लोभ राग है। फिर भीरुत्व और हास्य, भीरुत्व का अर्थ होता है भय डर, ये द्वेष है, और हास्य ये राग है। तो क्रोध और भीरुत्व कषाय नोकषाय, लोभ और हास्य कषाय नोकषाय, इनका प्रत्याख्यान आनी, प्रत्याख्यान कर दो, त्याग कर दो बोलते समय, क्योंकि आचरण की क्रिया है ना, ये भावना आचरण रूप है, तो बोलते समय इनको छोड़ दो। क्रोध में मत बोलो, लोभ में मत बोलो, डर कर मत बोलो, हंस कर मत बोलो। तो राग द्वेष से बोला जाने वाला असत्य टल जाएगा। इनको छोड़कर आप बोलेंगे तो आप राग द्वेष के कारण झूठ नहीं बोल पाएंगे। अब अज्ञान के कारण जो झूठ बोला जाता है, तो जिसकी जानकारी नहीं उस बारे में बोलना ही नहीं, एक तो ये रास्ता है, और दूसरा अगर बोलना ही है तो फिर अनुवीची भाषण, शास्त्र के अनुसार बोलना प्रारंभ कर दो। आपके पास आंसर नहीं तो आप शास्त्र खोल करके शास्त्र में से बोल सकते हो कि ये लिखा है इसमें। अनुवीची, वीची का अर्थ होता है लहर, तरंग, नदी की जो लहर होती है, तो उस लहर से विपरीत नहीं जाना है। विपरीत जाओगे तो प्रतिवीची होगी, और उसके अनुकूल बहोगे तो वो अनुवीची भाषण कहलाएगा। और अनुवीची भाषण जो होता है वो कौन सी लहर के प्रति, किस लहर के अनुकूल बहने की कह रहे हैं वचन बोलने की, तो आगम की लहर। वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, ये हिमवान पर्वत से गंगा नदी निकलती है, तो महावीर भगवान हिमालय थे, हिमवान थे, और फिर वो जो उनके मुख से जो वाणी निकली वो आगम है, वो जिनवाणी है, और उसको गुरु गौतम माँ जो थे वो जो एक कुंड रहता है उसमें पहले पानी गिरता है ना, नदी जहाँ से निकलती है तो एक कुंड में गिरता है पानी, फिर वहाँ से बह करके वो जाती है समुद्र तक। तो महावीर भगवान की जो वाणी रूपी गंगा थी वो वहाँ से निकली महावीर स्वामी से, और वो बहती हुई मोक्ष समुद्र तक के चली जाती है, और जो उसमें उस अनुवीची हो जाता है वो वहाँ तक चला जाता है, तरंग के अनुसार चलता है। जो प्रतिवीची होता है वो कहीं से कहीं जा करके फेंका जाता है, बाढ़ के खिलाफ जाओगे या फिर तीव्र प्रवाह के विरुद्ध जाओगे तो फिर अपना नुकसान होगा। तो अनुवीची भाषण आगम रूपी तरंग के अनुकूल वचन बोलना असत्य का निवारक है, अज्ञान जनित असत्य उससे दूर हो जाता है। अब तृतीय व्रत की जो भावना है, यहां पर अचौर्य व्रत है, अचौर्य। अब साधु कैसी प्रवृत्ति करे कि उनको ये दोष न लगे चोरी का, तो उसके लिए उन्होंने पांच बातें बताई। शून्यागार, खाली घर में रुकना। तो अब वो खाली घर है, कोई मालिक नहीं है, तो फिर आप रुक गए तो आपको रुकते समय किसी के स्थान पर कब्जा करने का दोष नहीं लगेगा, आपको बिना पूछे किसी के स्थान पर ठहरने का दोष नहीं लगेगा, वो शून्यागार है, खाली घर है, तो वहां रुकना। दूसरा विमोचित आवास, विमोचित का अर्थ होता है खाली कराए गए, छुड़ाए गए आवास। ये स्थिति बाढ़ के समय या तूफानों के समय बनती है, जब खतरे वाले स्थान पर अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और वहां से सबको खाली करवा करके दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। जैसे अभी जो तूफान आए थे ना, कौन से तूफान आ चुके हैं, सुनामी आ चुका है, फानी आ चुका है, कई तरह के तूफान आते रहते हैं, तो वो जिस तटीय भाग में अपना प्रकोप करता है तूफान और बड़े भारी वेग से वायु चलती है और तबाही मच जाती है, विनाश लीला हो जाती है वहां पर, तो वो स्थान खाली करा देते हैं। तो खाली कराया हुआ जो स्थान है वो जब तक खाली है, तूफान चला भी गया खाली है कुछ समय के लिए, तो वहां पर रुकने में कोई आपत्ति नहीं है। और अगर वहां पर भी प्रतिबंध लगा हो कि नहीं उस एरिया में नहीं जा सकते, तो मत जाओ। आप ये मत कहो कि भाई हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि भाई खाली कराए गए स्थान पर रुक सकते हैं साधु, तो तुम हमें मत रोको। ये उनको मत सिखाओ। परोपरोधाकरण, फिर आप जहां रुके हैं अगर और भी कोई रुकना चाहे तो उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करना कि भाई अब हम रुके हैं और तुम निकलो वहां से बाहर, ऐसा नहीं। आप मालिक थोड़ी हैं वहां के, तो अगर आप उसको हटाओगे तो फिर ये हो गया कि ये आपकी जगह है और आपकी जगह तो है नहीं, तो आपकी जो जगह नहीं है उसके आप मालिक बनोगे तो फिर चोरी हो जाएगी। तो इसलिए किसी को आने पर नहीं रोकना। और भिक्ष शुद्धि यानी जो भिक्षा के नियम बताए हैं शास्त्रों में साधु के लिए, बड़े कठोर नियम हैं। और यहां तक कह दिया है कि भिक्षा को अगर कोई साधु सही पालते हैं, भिक्षा विधि अगर सही ढंग से करते हैं, तभी वो चारित्र को सुरक्षित रख सकते हैं। चारित्र की संपदा इसी से बंधी हुई है, भिक्षाचर्या से। तो इसकी शुद्धि रखना आपको। फिर सधर्मा विसंवादा, अपने जो अन्य साथी हैं, सधर्मा जन है जो मतलब अपने साथ के और भी जो दूसरे साधु हैं, दूसरे व्रती हैं, उनके साथ किसी वस्तु को लेकर मेरा तेरा नहीं करना, उससे फिर चोरी का दोष लग सकता है। मान लो वो आपकी वस्तु न हो और आप मेरा मेरा कर रहे हो, तो फिर आपको चोरी का दोष लग जाएगा। कभी कभी भ्रम भी हो जाता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि दो लोगों के पास बिल्कुल एक जैसी चीज है, अरे तूने मेरी वस्तु कैसे ले ली, फिर उससे खींच करके ले लेता वो, और बाद में जब वो देखता है अरे मेरे पास तो ये वस्तु है, बिल्कुल एक ही कंपनी की है दोनों चीजें, तो मेरी बड़ी गलती हो गई कि मैंने उसके हाथ से छीन ली, फिर उसको वापस देने जाता है, क्षमा मांगता है, कान पकड़ता है और क्या क्या करता है नाटक। तो फिर पहले ही सोच लेना था। अब इसके बाद ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए कह रहे हैं कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, आपने उस विषय का त्याग किया, तो अब स्त्रियों में राग को, अशुभ राग को उत्पन्न करने वाली चर्चाएं नहीं करना है, वैसी कहानियां नहीं सुनना है जिससे कि उस तरह की बिगड़ी हुई भावना अंदर उत्पन्न हो जाए, फिर उनको उस तरीके से देखना नहीं है, पूर्व काल का स्मरण भी नहीं करना है, जो कुछ भी पहले हुआ है उसका स्मरण नहीं करना है, क्योंकि ये सब नौकर्म बन जाते हैं। नौकर्म का अर्थ यह है कि इन प्रवृत्तियों से अपने अंदर वो चीज वापस जागृत हो जाती है जो चीज अपन छोड़ने के लिए तत्पर है। फिर वृषेष्ठ रस, गरिष्ठ रस यानी इंद्रियों में एक मादकता लाने वाला जो रस होता है, उसका सेवन नहीं करना है। और स्वादिष्ट जो अपने को सबसे प्रिय है उसका सेवन नहीं करना, उनके सेवन से जीव अपने वश में नहीं रहती, स्वाद के अधीन हो जाती है अपनी जीवा, और अगर जीवा वश में नहीं रही तो फिर मन वश में नहीं रहता। मन को जीतने के लिए स्वाद पर विजय प्राप्त करना होती है। फिर स्वशरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर की सजावट का त्याग करना है, ऐसी सजावट जो दूसरों के मन में विकार उत्पन्न करे। एक सामान्य सजावट तो रहती है, सौभाग्यवती जो नारियां रहती है वो करती हैं, लेकिन ऐसी सजावट जिससे कि विकार उत्पन्न हो जाए देखने वाले को, वो नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य की भावनाएं हैं, तो इसमें वो बात कह रहे हैं। तो फिर इसको याद कैसे रखेंगे? पहला है सुनना, दूसरा है देखना, तीसरा है याद करना, चौथा है खाना, और पांचवा है सजावट। तो इनसे बचोगे तो फिर ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, और ब्रह्मचर्य की रक्षा से एक कदम और आगे स्थिर रहेगा। फिर परिग्रह त्याग के जो पांच भावनाएं वो है कि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो प्रिय वस्तु है उससे राग नहीं करना, जो अप्रिय है उससे द्वेष नहीं करना, रसना संबंधी प्रिय से राग और अप्रिय से द्वेष नहीं करना, घ्राण संबंधी यानी खुशबू और बदबू दुर्गंध सुगंध इनमें राग द्वेष नहीं करना, सुगंध में राग और दुर्गंध में द्वेष नहीं करना। फिर चक्षु इंद्रिय है, आंखों से जो वस्तुएं अपने को अच्छी लगती है उनमें राग और जो बुरी लगती है उनमें द्वेष नहीं करना है, उनका त्याग करना है, वर्जन आनी उनसे, उनको उनका वर्जन करना है आपको। और कर्णेन्द्रिय से जो राग उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, प्रशंसा होती है, राग उत्पन्न होता है। खैर प्रशंसा मन का विषय है, अभी तो यहां पर समझ लो कि जो उस तरह के संगीत हैं जो भक्ति में काम नहीं आते लेकिन लौकिक सुखों में जो संगीत उपयोगी रहते हैं उसमें राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना उस तरह के कोई वस्तु में। यहां तो राग द्वेष छोड़ने को कह रहे हैं, संगीत के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहे, बस राग द्वेष छोड़ने को कह रहे हैं इंद्रिय विषयों में। तो इससे किसी वस्तु को अपनाने की भावना नहीं होगी, राग होने से अपना लेते ना, तो अपनाने की भावना नहीं होगी तो परिग्रह का दोष टल जाएगा, अपरिग्रह स्थिर रहेगा। फिर आचार्य कहते हैं कि हिंसा आदि जो पाप हैं वो इस जन्म में और आगामी जन्म में दो ही काम करते हैं, एक तो नुकसान देते हैं और दूसरे दोष उत्पन्न करते हैं, नुकसान भी होता है और दोष भी होता है इसमें। अथवा दुखमेव वा, ये स्वयं दुख रूप है, क्योंकि पाप जो होते हैं पांचों पाप इनको करते समय अपनी कषायें मंद नहीं होती, तीव्र कषाय हो जाती है, तो तीव्र कषाय अपने आप में दुख रूप होती है, तीव्र कषाय कभी भी सुख नहीं देती, अकुलता रूप हो जाती है। फिर कहते हैं मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु, सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना कि सब सुखी रहे। फिर जो गुणीजन है मोक्ष मार्ग के गुणजन के पास है उनके प्रति आह्लाद रखना, प्रसन्नता रखना, और जो दीन दुखी जीव हैं पीड़ित हैं उनके प्रति करुणा, और ऐसी करुणा जिससे कुछ लाभ हो उनको, नहीं तो करुणा तो ऐसी भी होती है कि रोड पर जाते जाते किसी प्राणी को दुखी देखा और कई लोग निकल जाते हैं ऐसे देख करके, ऐसे करके निकल जाते हैं, तो उससे उसका क्या भला हुआ, आप आवाज करके निकल गए, अब भारी करुणा हो गई आपकी, तो उसकी भलाई भी हो, ऐसी करुणा, सक्रिय करुणा। और माध्यस्थ्य, माध्यस्थ्य का अर्थ होता है जो अविनेय है, अविनेय शब्द का अर्थ क्या लेना है, तो जो तत्वार्थों के श्रवण करने में, तत्वार्थों को ग्रहण करने में अर्थात समझने में तत्पर नहीं है, और इनको सुनकर और समझकर जिन्होंने एक भी गुण अपने अंदर प्राप्त नहीं किया है वो अविनेय कहलाते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति तटस्थ रहना है, माध्यस्थ रहना है। और कौन सी भावना है, तो बोले जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत के स्वभाव का चिंतन करेंगे तो संवेग होगा, कितना विशाल है जगत, यहां पर कर्मों के अनुसार जीव कैसे कैसे दुख प्राप्त करते हैं, संवेग उत्पन्न होगा कि मुझे चार गतियों में नहीं भटकना, ऐसी भावना आएगी। तो चार गतियों से भयभीत होना संवेग है। फिर शरीर के स्वभाव का चिंतन करना, तो उससे वैराग्य होता है। कैसा है ये शरीर, दो दिन स्नान न करो तो हाल बेहाल हो जाते हैं। ये शरीर बस एक स्वच्छता का उपक्रम करने पर ही अच्छा लगता है, अगर इस शरीर को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो ये शरीर अत्यंत अपवित्र है। इस शरीर में कैसे रहते हैं जीव, अपने ही मोह के कारण। इसलिए कर्मों पर विजय प्राप्त करके सिद्धालय में जाकर रहना है। कब तक इस मैले घर पर निवास करते रहेंगे, ये वैराग्य भावना है। फिर इसके बाद पंच पापों का स्वरूप बतलाया कि कषाय के आवेश में ही ये पाप होते हैं, मंद कषाय में नहीं होंगे। कषाय के आवेश पूर्वक प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है, झूठ बोलना असत्य है, किसी की वस्तु बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है। फिर एक विशेष प्रकार के राग को प्राप्त हो जाना अब्रह्म है, और अर्जन संरक्षण और संस्कार आदि करके किसी वस्तु को अपने पास संग्रहित करना परिग्रह है। अर्जन संरक्षण और संस्कार आदि, तब जाकर के वो परिग्रह है। केवल मेरा कहने से कोई चीज परिग्रह नहीं होती। मेरा देश, तो मेरा देश कोई परिग्रह हो गया? मेरे गुरु, वो परिग्रह हो गए क्या? मेरे पिताजी, परिग्रह हो गए क्या? मेरा कहना मात्र परिग्रह नहीं है, लेकिन अर्जन करना उसका, उसकी रक्षा संरक्षण करना और उसके संस्कार आदि करना, उसको सजावट आदि करना उसकी, इसका नाम परिग्रह है। फिर बोलते हैं कि व्रती जो होते हैं माया मिथ्या और निदान तीन शल्यों को भी छोड़ देते हैं, तब वो व्रत संपन्न होते हैं। और व्रती दो प्रकार के हैं, गृहस्थ और साधु, अगारी और अनगार। इसके बाद के सूत्र में आचार्य कहते हैं कि अणुव्रतोगारी, अगारी जो है गृहस्थ जो है अणुव्रती है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो अनगार है वो महाव्रती है। अब वो साक्षात महाव्रती भी हो सकते हैं, उपचार महाव्रती भी हो सकते हैं। जैसे आर्यिका माता जी हैं, उनके लिए कुछ आचार्यों ने उपचार महाव्रति कहा है, और क्षुल्लकों के लिए जैसा अपन कल पढ़ रहे थे तो उसमें दो शब्द आए थे, उन पर हमने जोर नहीं दिया था, पर एक शब्द था उत्तमाणुव्रति और दूसरा शब्द था परमाणुव्रत धारकम। परम अणुव्रत या उत्तम अणुव्रत के धारक। अब ये परम और उत्तम का अर्थ क्या होता है? परम और उत्तम का अर्थ ये है कि वो श्रावक धर्म में स्थित होने के कारण, अर्थात श्रावक की 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत आते हैं क्षुल्लक। तो अंतिम प्रतिमा है 11वीं प्रतिमा, छठी 11 प्रतिमाधारी, तो उसमें आने के कारण उनका गुणस्थान मुनि का गुणस्थान नहीं है। इसलिए उनके व्रत जो है वो साक्षात महाव्रत स्वरूप नहीं है, लेकिन महाव्रत के किंचित लघु रूप में है। क्योंकि इनके जो व्रत है उसमें एक तो पात्र प्रक्षालन और दूसरा वस्त्र प्रक्षालन, ये दो बातें जो हैं वो जो पूर्ण अखंड महाव्रत जो होते हैं उनसे भिन्न है। दो बातें भिन्न है। तो उत्तम और परम अणुव्रत कहा है क्षुल्लकों के लिए, और आर्यिकाओं के लिए उपचार महाव्रत कहा है। उनके पास भी साटिका होती है, साड़ी, तो साड़ी भगवान ने दी हुई है, अर्थात भगवान के आदेश से उनको साड़ी धारण करना होता है। तम्मा तासिम च संवर्णम, प्रवचन सार में एक गाथा है जिसमें लिखा है कि उनको आवरण में रहना होता है, क्योंकि वो पर्याय वैसी है कि आवरण के बिना नहीं रह सकते। तो इस तरह ये पांच व्रतों का विवरण यहां पर पूर्ण होता है। अब श्रावक धर्म का वर्णन यहां से आचार्य महाराज करेंगे, जिसमें पांच पापों का एकदेश त्याग करने से अणुव्रति हो गए, अगारी हो गए, अणुव्रतोगारी। और फिर आगे और भी श्रावक धर्म में क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या व्रत होते हैं, उनका वर्णन आगे आएगा, जो सात शील कहलाते हैं, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत। जैनम जयतु शासनम।